जैसे आगे कहा गया है, शिष्य का कर्तव्य है सदैव गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में सम्मान देना, लेकिन साथ ही साथ विचार करना है कि गुरु का अधिकार नहीं है भगवान की दिव्य लीला अनुकरण करना। ढोंगी कृत्रिम गुरु श्री कृष्ण से अभिन्न, संपूर्ण रूप अभिन्न खुद को मानते हैं, और इस प्रकार से शिष्यों को प्रताड़ना देते हैं। लेकिन ऐसे मायावादी केवल शिष्यों को कुशिक्षा देते हैं, क्योंकि उनके चरम लक्ष्य है भगवान के साथ एक होना। ये भक्ति भावना के विरुद्ध है। तो ये गुरु विषय के बारे में और भी बोलना है। पहला क्लास इस विषय में बोला कि ये गुरु तत्व विशाल है, अपार है। हम वो गुरु तत्व सागर से एक दो बिंदु को छूते हैं। तो गुरु कौन है? तो माता पिता भी गुरु है। संगीत का शिक्षक, स्कूल का शिक्षक, बड़े भाई बहन सब गुरु है, क्योंकि सब ज्ञान दाता है। लेकिन वे पूर्ण गुरु नहीं है, आंशिक गुरु, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं देते। जो पूर्ण ज्ञान देते वे पूर्ण गुरु है। और पूर्ण ज्ञान क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है ईश, ईशोपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक है। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान का वर्णन है कि वे पूर्ण है। तो पूर्ण ज्ञान देने वाले ऐसा आचार्य है जो भगवान से अभिन्न है, एक रूप में अभिन्न है। तो भगवान स्वयं नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान जैसे ज्ञान देते हैं, और क्योंकि इनके उद्देश्य और भगवान का उद्देश्य पतित जीव का उद्धार करना उद्देश्य एक ही है, इसलिए वे भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान जैसे माननीय या भगवान से और भी माननीय है, मान्य है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि नमार्थ बुद्धिया सुयत, नमार्थ बुद्धि, अर्थात गुरु एक मरणशील व्यक्ति जैसे नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रस्ताव में शंका हो सकती, खिलाफ हो सकती, कि हम देखते हैं कि गुरु हम जैसे साधारण व्यक्ति, हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, सोते हैं, कभी कभी बीमार होते, और गुरु का मरण भी होते, तो वो भी साधारण व्यक्ति है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। तो गुरु कैसे इतना महान है? तो महान है क्योंकि वे हरि कथा कहते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण रूप से जानते हैं कैसे मेरा तथाकथित जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात कृष्ण का जन्म नहीं है और कर्म नहीं है, अजो भी संगना कृष्ण का जन्म जन्म होते वो इनकी लीला है। हम जैसे प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार जन्म नहीं लेते। भगवान त्रिगुण और पूरी माया शक्ति के अतीत है और महेश्वर, भगवान है महेश्वर, भगवान नहीं है माया के अधीन। तो भगवान का कर्म, भगवान जब आते ही कुछ करते हैं, फलयापयोधि जल कृतवान सी वेदम इत्यादि, वो जब मत्स्य का रूप में आते हैं तो प्रलय का जल से वेद उधार करते हैं, जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो विस्तार लीला प्रकाश करते हैं, जब राम के रूप में है रावण का वध करते हैं इत्यादि। तो भगवान का काम है, लेकिन वो काम किस प्रकार है? नमाम कामानि लम्भन्ते न मे कर्म फले स्पृहः। कृष्णा का कोई जिम्मेदारी नहीं है, कृष्णा की कोई आसक्ति नहीं है काम करने के लिए, फिर भी काम करते, लेकिन वो काम हमारा काम जैसे नहीं है। हम सब कुछ जो करते हैं वो प्रकृति की त्रिगुण से संचालित और संपादित होते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः। लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो इनकी अंतरंग शक्ति दिव्या शक्ति से संपादित होते हैं। कृष्ण की असंख्य शक्तियां हैं, पराश शक्ति विविधाए वशूयते, जिनमें इनकी क्रिया शक्ति एक है जिससे सब कुछ सब काम होते हैं। तो कृष्ण कैसे दिव्या होते हैं, कैसे त्रिगुणातीत है, कैसे इनका जन्म और कर्म संपूर्ण साधारण व्यक्तियों से पृथक होते हैं, खाली इस विषय को समझने से हम भी भगवान जैसे दिव्य स्वरूप मिल सकते हैं। वास्तव में हमारा दिव्य स्वरूप है, लेकिन वो अभी आवृत है, सुप्त है। लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य लीला और दिव्य स्थिति समझने से हम भी दिव्य दिव्या स्थिति में स्थित हो सकते हैं। तो कैसे समझना है? वो खाली पुस्तकी ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान भगवान से आते हैं, सेवोन्मुखी अर्थात जो सेवा परायण है, जो Krishna Seva mate would say him. So aisa bhakt ko bhagavan inke hriday mein wo divya gyan prakat karte hain. Atah shri krishna nama adina bhavet grahya indriyai sevon loke hi jivad swayam eva spurati atah. To shastra mein ye sabhi gyan hai. Lekin wo shastra gyan hamare hriday mein prakat karne ke liye guru vachan sunna chahiye. Isliye to guru vaishnav hona chahiye. Guru ka matlab jo tatvavit hai, tatvadarshi hai. To guru Krishna se शक्ति मिलते हैं, वो तत्व ज्ञान शिष्यों के हृदय में प्रकट करना. तो गुरु का मुख्य लक्षण है दिव्य ज्ञान देना. तो नवधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. तो इसमें प्रथम है श्रवण. श्रवण के बिना हम ज्ञान नहीं मिलेंगे, हम पता नहीं मिलेंगे और क्या करना. तो पहले श्रवण है और बार बार श्रवण करना चाहिए. जैसे कि सब भूल धारणा जो हृदय में है तो सब खंडित होगा, फिर वो भगवत तत्व ज्ञान स्पष्ट प्रकट होगा हृदय में. तो यही गुरु का मुख्य कार्य. तो गुरु तो आचरण भी करते हैं, कीर्त मतलब नाम कीर्तन भी करते हैं और अनन्य प्रकार से कृष्ण सेवा करते हैं. लेकिन गुरु का मुख्य कर्तव्य है हरि कथा प्रचार करने से, कीर्तन करने से शिष्यों को ज्ञान देना. तो इसलिए जो गुरु है तो ज्ञानी होना चाहिए. वो ज्ञान जैसे बोला था केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु ऐसे बोलते हैं जैसे कि शिष्यों शुन्वतां श्रद्धया नित्यम श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण करने से शिष्यों ज्ञान दिव्य ज्ञान संचारित होंगे. तो एक परिप्रेक्ष्य में सब वैष्णव गुरु है. ऐसा नहीं है कि खाली बड़ा सज्जित व्यास स्थान में बैठने से एक व्यक्ति गुरु होते, या खाली एक व्यक्ति को गुरु रबर मोहर लगाने से गुरु बनाना है, वो गुरु है. देखो वो साइन है उसका कपास में, वो गुरु है. कौन गुरु है? वो गुरु है, सब वैष्णव गुरु. कैसे? क्योंकि गुरु का मतलब आचार्य, जो आचार्य जो आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं. तो सब वैष्णव वैष्णव धर्म पालन करते हैं. तो गुरु का भाव नहीं लेने के भी तो गुरु होते हैं. तो जितने भी वैष्णव हो तो वो वैष्णव इतने सब गुरु भी होते, अवैष्णव गुरु नहीं हो सकते। अवैष्णव गुरु न स्यात्, और खाली वैष्णव गुरु हो सकते, क्योंकि गुरु का मतलब जो परम सत्य ज्ञान देते, और परम सत्य है कृष्ण। और अगर एक व्यक्ति बड़ा पंडित हो लेकिन कि श्री कृष्ण परम सत्य है नहीं मानते, तो उसका कोई अधिकार नहीं है गुरु होना। तो वैष्णव तो इतना सा शास्त्र शिक्षित नहीं होने के भी तो गुरु होते हैं, क्योंकि मानते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, वे भगवान हैं। तो सब वैष्णव गुरु है, लेकिन विशेषकर जो वैष्णव जो दायित्व लेते हैं दूसरों को उद्धार करना, दूसरों को हरि कथा बोलने से, हरि कथा बताने से, दिव्य ज्ञान संचारित करते हैं, तो वो गुरु है। लेकिन गुरु तो हरि कथा कहते हैं लेकिन खाली वक्ता नहीं है। तो खाली ऐसा नहीं है कि खाली बोलते सेवा करो सेवा करो वैष्णव बन जाओ, ऐसा नहीं बोलते। तो वो स्वयं वैष्णव आचरण पालन करते, कृष्ण और कार्ष्ण की सेवा करते। कार्ष्ण का मतलब वैष्णव, वैष्णव का मतलब विष्णु भक्त, और कार्ष्ण का मतलब कृष्ण भक्त। तो कृष्ण और कार्ष्ण की सेवा करना यही गुरु का मूल उपदेश है, और वे स्वयं भी करते, तो ऐसे आचार्य होते हैं। तो आजकल एक विचित्रवाद प्रचलित है कि श्रील प्रभुपाद वास्तविक आचार्य थे, तो वो विचित्र नहीं है, वो स्वयं प्रकाश। लेकिन विचित्रवाद है कि प्रभुपाद के बाद और कोई गुरु नहीं होंगे, कि प्रभुपाद इनके ग्रंथों में उपस्थित है और ग्रंथ के रूप में गुरु होते, वो सही है। लेकिन कि व्यक्ति के रूप में और कोई गुरु नहीं होंगे, वो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक में नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं है, और कोई भी वास्तविक वैष्णव परंपरा में नहीं है। लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि प्रभुपाद इतना महान थे और प्रभुपाद के बाद वो सब प्रभुपाद गुरु थे, और प्रभुपाद के बाद और कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है जो प्रभुपाद बार बार बोले, कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र के ने नय, जय कृष्ण तत्व वेत से गुरु हय, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तारो इदेश। कि चाहे भी जन्म जन्म से विप्र ब्राह्मण होते, कि बा विप्र या सन्यासी होते या गृहस्थ होते, तो ये आगा कृष्ण तत्व वेत है, भगवत तत्व में ज्ञानी होते हैं, वो सही गुरु है, वो व्यक्ति गुरु होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु है तारा देश। तो प्रभुपाद कितना बार इस श्लोक का तात्पर्य दिया, प्रभुपाद बार बार बोले कि अगर कोई सोचते है कि मैं गुरु होने के लिए योग्य नहीं हूं, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोलते तो गुरु कार्य करो अमर आज्ञा मेरा आज्ञा से। तो मैं बड़ा पंडित नहीं हूं, शास्त्र ज्ञान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले कि गुरु होने के लिए शास्त्र संस्कृत ज्ञान ही होना चाहिए, नहीं। और नहीं बोलते कि कृष्ण तत्व वेत होने से कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है, तो यही क्वालिफिकेशन। तो जो परंपरा का मतलब शिष्य जो गुरु से मिलते हैं, तो गुरु का अप्रकट के सामान्यतः गुरु का अप्रकट के बाद वो दूसरों को एक ही उपदेश देते हैं। और ऐसे परंपरा जारी रहते, जैसे कि भक्तिस्तंभ सरस्वती ठाकुर बोले कि अगर वैष्णव तो गुरु कार्य नहीं करते हैं तो परंपरा बंद होगा। अगर कोई वैष्णव सोचते है कि मैं गुरु हूं तो वो वैष्णव नहीं है, वो गुरु नहीं है। और अगर कोई सोचते है कि वो वैष्णव गुरु कार्य करते अपनी प्रतिष्ठा के लिए या भौतिक लाभ आर्थिक लाभ के लिए, वो संभव है लेकिन देखना चाहिए। तो ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि अगर कोई गुरु कार्य करते हैं तो दूसरों की प्रशंसा करते, वो ऐसा होना चाहिए, गुरु की प्रशंसा करना चाहिए, वो शिष्य का कर्तव्य है। और गुरु को कुछ प्रणामी देने ऐसा होते हैं, ये प्रथा है। तो ऐसे गुरु होना एक सुविधा पेशा है। अगर गुरु हो तो कुछ काम नहीं है, तो खाली बैठना, आशीर्वाद देना और पैसा लाना। तो ऐसा कुछ गुरु होते हैं। गुरु वो बहवो संति शिष्य वितापहारक, दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। बहुत गुरु है जो निपुण है शिष्यों का वित्त धन लेने में, लेकिन दुर्लभ है वो सद्गुरु जो निपुण है शिष्यों का संतापलन कष्ट। तो ऐसे है वो एक बात है कि प्रभुपाद के बाद वो सब जो आया है प्रभुपाद का आदेश के अनुसार गुरु कार्य करना, जो सब ऐसे लोभी ढोंगी पतित, इसलिए प्रभुपाद के बिना कोई दूसरे गुरु नहीं हो सकते। विद्विक बात बोलते कि प्रभुपाद तो एक ही गुरु है, और प्रभुपाद का अंतर्ध्यान के बाद वो दीक्षा कैसे होगी? तो प्रभुपाद तो फिर गुरु होंगे और दीक्षा ऋत्विक पुरोहित के द्वारा होगा और प्रभुपाद तो गुरु होंगे। क्या हुआ आज? आज मतलब पचास मिनट के पहले एक युवक मेरे पास आया जो अभी हमारे बीच बैठ रहे हैं और बोला कि वो एक जगह गया जिसमें वो सब ये सब हरे कृष्ण इत्यादि कीर्तन करते हैं। उन्होंने पूछा कि गुरु कौन है? उन्होंने बोला कि गुरु कोई नहीं है, वो पुस्तक में गुरु है। और इनका विशेष ज्ञान नहीं है ये सब विषय में, लेकिन वे उनको बोले कि लेकिन पुस्तक में अगर प्रश्न हो तो कैसे पुस्तक मुझे उत्तर देगा, कैसे पुस्तक मुझको मार्गदर्शन देगा? तो ऐसा है कि पुस्तक में गुरु है लेकिन हमको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने के लिए एक प्रकट व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो वाद कि प्रभुपाद के बाद और कोई दूसरा गुरु नहीं होगा वो विचित्र है, अव्यवहारिक, वो सिखवाद जैसे है नहीं, वो गुरु गोविंद नो गुरु सिख धर्म में गुरु गोविंद तक नो गुरु थे और इसके बाद वो खाली किताब की उपासना और कोई गुरु नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि एक वैष्णव गुरु होते हैं अपना स्वार्थ के लिए, लेकिन वो गुरु तो गुरु नहीं है। वैष्णव कैसे गुरु होते हैं? तो सेवा भाव में सेवा है, नहीं सोचते कि मैं प्रभु हूं, सोचते कि मैं प्रभु और प्रभुपाद के सेवक हूं और प्रभुपाद हमको यही सेवा दिया, दूसरों को सेवा में लगाना। तो सेवा भाव से करना है, प्रभु अभिमान से नहीं है। तो सदगुरु सोचते हैं कि वो सभी शिष्यों मेरे गुरु हैं क्योंकि मुझको अवसर देते हैं मेरे गुरु की सेवा करने, सोचते हैं कि मेरे गुरु मेरे सामने उपस्थित होते हैं शिष्य के रूप में और मुझको परंपरा और कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। अगर कोई नहीं आते हैं तो सब कुछ जो मैं गुरु से सीख लिया तो कैसे मैं प्रचार करता था अगर कोई सुनने वाले नहीं है? तो इसलिए मेरा गुरु इनकी कृपा से बहुत रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि मैं आपसे मिलूंगा हरि कथा बोलना और जैसे कि मैं माया से रक्षित होऊंगा। तो ऐसा है कि वो वाद है कि प्रभुपाद के बाद कोई दूसरे गुरु नहीं होंगे, प्रभुपाद ऐसे कभी नहीं बोल, बोलने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि गुरु तो खाली गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार बोलते, और गुरु साधु और शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है। और ये ऋत्विकवादी बोलते कि वो प्रभुपाद इतना महान है कि अगर चाहते हैं तो कुछ नया स्थापन कर सकते जो शास्त्र में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए कुछ विधि स्थापन नहीं किया जो पाश्चात्य देशों में पालन करना संभव नहीं है। एक शास्त्र विधि है उसागा पार नहीं करना, विदेश नहीं जाना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रभु की इच्छा है पृथ्वी ते आचे जतो नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोरना, कि पृथ्वी में प्रत्येक गांव और नगर में मेरा नाम प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, भविष्यवाणी है ऐसे। तो अगर सागर पार नहीं करना है तो कैसे वो वाणी पूर्ण होगी? तो यही शास्त्र विधि की विदेश नहीं जाना वो अनुकूल है वो आध्यात्मिक जीवन में जो दुर्बल है, कमजोर है, जो असत्संग से पतित होगा। लेकिन जो भगवान की शक्ति से संचारित है, इतने से संचारित है कि ऐसे असत संग में, असत वातावरण में पतित नहीं हो तो पतित जन का उद्धार करने के लिए समर्थ है। तो ऐसा महान वैष्णव का विदेश जाने से कितना फायदा हो पृथ्वी के लिए? तो प्रभुपाद कुछ शास्त्र विधि स्थापन नहीं किया विदेश में। लेकिन इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद का अधिकार है सब कुछ और शास्त्र में और सब कुछ परिवर्तन करना, तो ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं शास्त्र देने वाले हैं और शास्त्र मानने वाले हैं। भगवान शास्त्र के अधीन नहीं है, लेकिन हमको शिक्षा देने के लिए शास्त्र को मानते। तो ऐसा मौलिक नियम है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु चरण में शरण लेना है। तो कोई आचार्य ऐसे नहीं बोले और प्रभुपाद भी नहीं बोले। तो ये सब खाली कल्पना है और दुर्भाग्य से काली का प्रभाव से इस वाद थोड़ा सा जनप्रिय है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी पृथ्वी में कोई भी भक्त जो शास्त्र ज्ञानी है इस मत को मानते हैं, कोई भी नहीं। जो शास्त्रीय पंडित है, जो शास्त्र में ओके शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द वैदिक शब्द में निष्णात मतलब डूब गया जैसे वो शब्द सागर में वैदिक ज्ञान में, तो ऐसा कोई भक्त ये मत को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जैसे सब गुरु होंगे, प्रभुपाद महान भगवतो महान, प्रहलाद महाराज का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, महान भगवतो महान, महा भगवत में मतलब भगवत का मतलब श्रेष्ठ भक्त, और भगवत से और महान है महाभगवत, और प्रहलाद महाराज का वर्णन है महान भगवतो महान, महा महाभगवत है। तो प्रभुपाद जैसे महान महान भगवत क्रौ क्रौ नहीं है, और ऐसे महान भगवत इस दरिद्र पृथ्वी में बहुत कम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु सेवा करने के मतलब गुरु का कार्य करने के लिए प्रभुपाद जैसे एकदम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद के पहले हजार हजार गौड़ीय वैष्णव गुरु थे, जो सब महान जगत गुरु नहीं थे, सब शिष्यों के अंकों में ऐसे हैं। एक कहानी है भक्ति रत्न का से गौड़ीय वैष्णव शास्त्र की, एक भक्त का गुरु तो ज्यादा लोग परिचित नहीं थे, उनके खाली एक दो शिष्य, लेकिन वो इनके गुरु के गुरु परम गुरु बहुत विख्यात थे। तो क्या हुआ, क्योंकि जब कोई दूसरा भक्त से पूछा कि आपके गुरु पाद पद्म कौन है, तो अपना गुरु का नाम बोल के कोई पहचान नहीं की, तो कौन कौन, तो इसलिए इनके गुरु का गुरु नाम बोल। लेकिन यही बात सुन के श्रीनिवास आचार्य जो तत्कालीन वैष्णव समाज के परमाचार्य थे, तो ये बात सुन के कि वो भक्त उनका गुरु का नाम लंघन करके गुरु का नाम बोलते, तो ये बात सुन के श्रीनिवास आचार्य वो भक्त बहिष्कार किए वैष्णव समाज से। तो गुरु अपराधी है, तो वो गुरु तो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, दूसरों के विचार में एक साधारण भक्त जैसे है। लेकिन गुरु तो कभी भी साधारण नहीं होते। शास्त्र में ये लिखे कि अगर गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का एक अक्षर की शिक्षा देते हैं, तो शिष्य इतना ऋणी है कि असंख्य जीवनों में वो ऋण शोध नहीं कर सकते। तो ये सब बात का विचार करना चाहिए। साधु सावधान, सावधान करो, कौन सा मार्ग में जानना चाहिए। महाजनो ये न गथा सफन था, सब महाजन जो मार्ग हमको दिखाए हैं उसी मार्ग में जानना चाहिए। और नवीन आधुनिक जनप्रिय विचित्र मार्ग में नहीं जानना चाहिए। हरे कृष्ण।